ये आकाशवाणी है। अब आप मुकेश कुमार से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के लोगों की आकांक्षाओं से संचालित भारत का ऑटोमोबाइल क्षेत्र अभूतपूर्व कायाकल्प के दौर से गुजर रहा है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में 6 दिन के भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि देश के ऑटो उद्योग में पिछले वर्ष 12% की वृद्धि हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल से देश के ऑटो उद्योग को सहायता मिल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हरित प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रिक वाहन, हाइड्रोजन ईंधन और जैव ईंधनों के विकास पर भी ध्यान दे रहा है। श्री मोदी ने भारत में पिछले कुछ वर्ष में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तेज वृद्धि पर बल देते हुए कहा कि पिछले दशक में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 640 गुना बढ़ गई है। प्रधानमंत्री कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से अधिक गांवों में संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के अंतर्गत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस योजना का शुभारंभ किया था। इसका उद्देश्य उन्नत ड्रोन प्रौद्योगिकी सर्वेक्षण के जरिए घरों के अधिकार का एक रिकॉर्ड प्रदान करके ग्रामीण भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए। शतरंज खिलाड़ी डी कुकेश, निशानेबाज मनु भाकर, हॉकी खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पैरा निशानेबाज कोच सुभाष राणा सहित 5 कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिए गए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन के लिए चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी दी गई। यूक्रेन के साथ संघर्ष में रूसी सेना में कार्यरत 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं और अब तक 16 भारतीय नागरिक लापता हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि केरल के बिनिल बाबू की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि रूसी सेना में अपनी सेवाएं देने वाले अब तक 96 भारतीय नागरिकों को रूसी सेना द्वारा मुक्त कर दिया गया है और वे भारत लौट चुके हैं। बांग्लादेश की स्थिति को लेकर प्रवक्ता ने कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ मित्रतापूर्ण संबंध चाहता है। श्री जायसवाल ने बताया कि विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर अमरीका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा और सुरक्षा माहौल में बढ़ते तनाव को देखते हुए देश की आक्रामक और रक्षात्मक प्रतिक्रियाओं को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि देश के रक्षा बलों के काम में समय के साथ जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं। श्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में नौसेना के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि देशभक्ति और अनुशासन की भावना सैनिकों को देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरा करने में सहायता करती है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के लिए 11,440 करोड़ रुपए के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में बताया कि कल कैबिनेट की बैठक में पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में स्थित RINL देश के इस्पात क्षेत्र की महत्वपूर्ण कंपनी है। 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा की नामांकन प्रक्रिया आज 1,000 से अधिक उम्मीदवारों के नामांकन भरने के साथ समाप्त हो गई। नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन भाजपा की शिखा रॉय और नीरज बसोया ने अपने अपने नामांकन भरे। आम आदमी पार्टी के अवध ओझा, राखी बिल्डान और वंदना कुमारी ने भी अपने अपने नामांकन पत्र भरे। सोमवार तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। मुंबई पुलिस ने प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के संबंध में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। अभिनेता पर हमले के 24 घंटे बाद ये कार्रवाई की गई। पुलिस बांद्रा थाने में संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ कर रही है। खो खो विश्व कप 2025 के क्वार्टर फाइनल में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला बांग्लादेश से हो रहा है। इसी स्टेडियम में रात 8:15 बजे से भारतीय पुरुष टीम श्रीलंका के साथ खेलेगी। उधर राउरकेला में हॉकी इंडिया लीग में आज रात 8:15 पर दिल्ली एसजी पाइपर्स का सामना सूरमा हॉकी क्लब से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।